نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2024 DQ 2024 اور آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 27. اس سے پہلے کہ ہم پارہ 27 پہ جائیں جو وہ خوبصورت صورتوں کا ایک گلدستہ ہے جو ہمارے دلوں میں اور ہماری زبانوں پہ رہتی ہیں، خاص طور پہ سورت الرحمن اور سورت الحدید. لیکن تھوڑی سی باتیں ہم کریں گے پچھلے پارے کی. 26 پارے میں ہم نے بڑے خوبصورت موضوع کو دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ جب ایک انسان اللہ والا بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اچھے ساتھی مل جاتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد تھے، لیکن والذین آمنوا معہ، وہ ساتھی جو ان کو ملے وہ بھی تو بہت ہی خوبصورت تھے. آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کے بہت سارے قصے قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن نبیوں کا مشن آگے کیوں نہیں بڑھا؟ ایک تو اللہ کی حکمت تھی، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کو ساتھی بہت اچھے ملے. یہی سنت آگے سے بھی رحمہ کرام کی بھی رہی. آج بھی جن کو امام اعظم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام تو سارے ہی تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کو شاگرد بہت اچھے ملے. جیسے آپ نے قدوری، اور اسی طرح سے ایک اور ان کے اس شاگرد کا نام پڑا ہوگا نا، یعنی ان کا علم لے کر آگے بڑھے. تو سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس علم کے سلسلے میں آگے بڑھانا اور ہمیں اچھے مددگار دینا. اگلا پارہ یعنی 28 پارے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھیں گے کہ من انصاری اللہ، اللہ کے رستے میں میرا مددگار کون ہے؟ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھے ساتھیوں کی ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے. چونکہ دین کا کام ایک اجتماعی کام ہوتا ہے، اور یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں آج بھی ایسا کہ میں کروں گی، یہ میرا کام ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا ادارہ ہے، یہ میں ہوں تو میں ہوں، میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں. پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں تو مسجد بھی بیمار ہے، میں عمرے پہ گئی ہوں تو میرا انسٹیٹیوٹ بھی عمرے پہ گیا ہوا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہم نے سورت شورا میں بھی یہ چیز پڑھ لی، اور خاص طور پہ پھر 26 پارے میں تو یہ بات بہت ہی کھل کے واضح ہو گئی کہ ساتھیوں کی تربیت ہی وہ مشکل کام ہے جو اکثر لوگ کر نہیں پاتے. اور تربیت ہوتی ہے بٹھا کر، تربیت کا کوئی کورس نہیں ہے کہ جائیں جی یہ تربیت کے نقطے ہیں، یہ کر لیں گے تو آپ کی تربیت ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے، ریسیپیز جتنی مرضی آپ کو شیئر کوئی کر دے، جب تک خود چولہا کھول کر کھانا نہیں بنائیں گے، آپ کی وہ ساری ریسیپیز جو آپ نے بنائی سوچی تھی وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. بالکل اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دین کا علم لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اور اللہ سب کا قبول کر بھی رہا ہے اور کرے بھی، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کس کا پیغام آگے سے آگے جائے گا جس کو بعد میں لے کر چلنے والے بنیں گے؟ یہی شاید پیغام ہمارے اس دور قرآن کا بھی ہے. اللہ نے اس جگہ کو چنا، اللہ نے آپ جیسے پیارے لوگوں کو چنا. آپ نے میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہت ساری کمیوں کے ساتھ اس کام کو کیا بھی. اب بالکل یہ کام اپنے وہی بات ہے کہ کنارے پہ لگ رہے نا، اور یہ دن بڑے اداسیوں کے بھی دن ہوتے ہیں اور خوشیوں کے بھی دن ہوتے ہیں. ایک طرف کسی بھی کام کے کر لینے کی تکمیل کی ایک سینس آف اچیومنٹ تو نہیں، میں کہتی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، ایک قسم کی سینس آف کمپلیشن کہ چلے جو کام شروع ہوا تھا وہ پورا کیا ہے. ہنڈرڈ بار یہ جملہ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو شرائط ہیں کسی کام کے بھی قبولیت کے. لیکن جو تیسری فارم جو آپ کو دی تھی کہ اس کام کو پورا بھی کرنا، آپ کھانا بنا رہے وہ پورا پکا ہی نہیں تو کھائیں گے کیسے لوگ؟ سوچیے ذرا. تو چیزوں کی جو شروع کیا اس کو پورا کرنا، اور اسی طرح سے پھر اس کے اندر آپ ایک اور چیز، یہ ساری تمہید آپ کو اگلے بارے کی دے رہی ہوں جس وقت تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں پھر نظر میں رکھنی پڑتی ہے کہ جو بھی میں نے کیا، آپ میں سے بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کا بلب جلا، کچھ کا پہلے بھی تھا، اللہ کا شکر ہے اب 10 پہ تھے تو 12 پہ آگے آگے ہیں. हमने सूरह अहकाफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फत, सूरह हुजरात और सूरह कौफ और सूरह जारियात की 30 की हैं। क्या ये सफर इतनी तेजी से जो गुजरा, अल्लाह के नबी पर ये सूरतें उतरने में कितना वक्त लगा? जब ये मैं शुरू में आपको हर सूरत की वो देती हूँ ना, कब उतरी कहाँ, तो वहां जा थ्रू कीजिए, 94 से लेके आपको आज के पारे में तो बिल्कुल एंड तक के पारों की भी चीजें दिखेंगी ना। तो बिल्कुल ये सारी बात का कहने का खुलासा क्या है, आप और मैं आज पारे के पहले ही शुरू में ही दुआ करें कि अल्लाह ये जो अधूरा सफर अभी हमारा चल रहा है इसको पूरा कर दें। रब्बाना अतमिम लना नूराना पढ़ेंगे आज, कल के बारे में भी आएगा। ए अल्लाह कुरान के नूर को पुल सरहद तक कायम रखना, और मन जा बिस सिदकिन मन जा बि कल्बिन सलीम, कल पढ़ा सिद्क आपने, पीछे पढ़ा 24 पारे में, कि अल्लाह हमें नेकियों को लेकर पुल सरहद तक पहुंचने तक की नेकियां करने की तौफीक अता फरमाना। क्यों? इसलिए कि अधूरी नेकी किस काम की, देखे ना बड़ी प्यारी सी एक हदीस, यानी किसी को देने वाली चीजों में फरमाया कि उसको पूरा जोड़ा दिया फिर ही पहनेगा ना। आप किसी को चप्पल का एक पाव दे दें तो नहीं पहनेगा ना। आज हमारे कल्चर में ये है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, जिसने बहुत सारे जगहों पे दीन के नाम पर, यकीन कीजिए मैं बेदीनी तो नहीं कहती, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है दीन की, हमें खुद भी दीन का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पता होता और हम आगे चल पड़ते हैं। और एन उस अनाड़ी ड्राइवर की तरह जब हाईवे पे चढ़ते हैं और फिर सारे तरफ खतरे दिखते हैं तो फिर हमारे हाथ में स्टीयरिंग ठहरता नहीं है, फिर पूछते हैं कभी कुछ, वो मौजू छेड़ लेते हैं, फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। आप सबने बस एक दुआ करनी है, और मैंने भी अपने लिए बहुत प्यारी दुआ की है कि ये सुहूर सेशन मेरी जिंदगी तक हर रोज चलेंगे, क्योंकि रमजान आता है रमजान चला जाता है। एक स्कॉलर है, उनकी मैंने बात एक दफा सुनी थी रमजान के फौरन बाद का एक लेक्चर, देखे उन्होंने वही जुमले जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पे कहे थे ना, कि मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, के जो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन की इबादत करता था तो मोहम्मद तो चले गए। और इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा सोचिए, हमने रमजानी मुस्लिम नहीं बनना, हमने रहमानी मुस्लिम बनना, सूरत रहमान पढ़ते हुए। तो ये जो हमारे कल्चर में आ गया ना कि रातें मस्जिदों में भरी हुई है रमजान में, और ईद की रात मस्जिद कहती होगी किधर गए वो सारे नमाजी, इस कल्चर को खत्म कीजिए। और अगर मैं और आप इस रमजान के दौरे कुरान के बाद इस बात से मुत्तफिक ही हो गए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे बेहतरीन तरीके से चलाए, और जो कुछ भी हमने सीखा असल कीमत इस्तकामत की है, इसी पे इतना दिल खुल गया। आप अपने लिए दुआ करें, मैं अपने लिए। रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल-क़ौमिल काफ़िरीन, कि अल्लाह हमारे कदम जमा देना और हमें बीच रास्ते में ना रोकना, क्योंकि हम बहुत खुश हो जाते हैं काफी नेकियां कर ली हैं इस साल के लिए दर्स नफ, अब ईद की पार्टियां और उसके बाद फिर एक से एक जिस दुनिया से आते हैं उसमें गए, अल्लाह ने आपका मेरा हक नहीं रखा, और अल्लाह के दीन में इतनी गुंजाइश है कि आप एक के बाद एक काम करते जाएं, अल्लाह ताला आपकी बरकत दे देगा। फिर आप देखिए कि जिन्होंने अल्लाह रसूल की बात सुनी और ईमान लाए और चल पड़े और बात शुरू हो गई, हम पैदा हुए उन घरों में जहाँ इस्लाम था वो था, लेकिन अभी तक हम क्यों इतना स्टक है? कभी इस बात पे तो आप जरूर सोचें कि आखिर आज उम्मत मुस्लिमा का ये स्टक होना ये कहाँ तक जाएगा, जिसने कई और दूसरे लोगों को भी दीन में आने से रोका हुआ है। फिर मुनाफिकाना तर्ज अमल हमने खुल के देखा सूरत मोहम्मद में, और फिर माहदों की हिकमत देखी सूरत हुजरात में, और नफ्स की इसलाह के तरीके थे सूरत काफ में, और अब सूरत जारियात में भी देखेंगे। इस बारे में जब इस वक्त मेरे आपके सामने है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू की एक ही पुकार है, और वो बिल्कुल पारे के एंड पे, इंतजार कीजिएगा इस सूरत के जाने का। अगर सुन के बीच में छोड़ते हैं तो सूरत हदीद तक पूरा पारा सुनिएगा, क्योंकि इस पूरी पारे का जो उमूद, उमूद कहते पिलर को, ये मिडल में नहीं, ये शुरू में नहीं, ये आखिर में, और पारे का थीम क्या है, भाग दौड़ भागो फ़फ़िर्रु इलल्लाह। सूरत ज़ारियात की आयत 50 में पढ़ेंगे, अब अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, सूरत नजम की आयत 39 में। ये दीन भाग दौड़ से फैला है, कम्फर्ट जोन, रिलैक्सेशन तो ऐसे ही है कि दुनिया को आप जन्नत बना लें, और ये दुनिया काम की जगह नहीं, ये दुनिया आराम की जगह, और फिर जन्नत और कब्र के मामले में हमें नहीं पता क्या होगा। अल्लाह ने बंदे मोमिन के खमीर में मेहनत रखी है। ये अब तीसरे पारे की, हम तीसरा पारा 2 दिन में करेंगे इंशाल्लाह, तो आप इंजॉय करिएगा। छोटी छोटी सूरतें हैं, छोटे छोटे उसके पैगाम हैं, हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आप ये देखते हैं ना कि इंसान को मेहनत की आदत के साथ पैदा किया है, कब बच्चा दुनिया में आता है, कितना इजी था कि बच्चा दरख्तों पे उग जाता। माँ सोई होती, अगले दिन उसके पास रखा होता, बच्चों को मुश्किल था। जब पहाड़ों में से उसने ऊँटनी को निकाल लिया और दरख्तों पे इतने प्यारे प्यारे फल लगा दिए, तो ये भी मुमकिन था। पर ये माँ का दर्द जो होता है ना, ये बच्चे का भी दर्द होता है। बोथ वे स्ट्रगल होती है, फिर बच्चा डिलीवर होता है। ये है भाग दौड़। आप बच्चे छोटे को कुछ काम ना देना तो वो आपको इतना सताता रहेगा। बच्चे भागते हैं, बच्चे अपने आप को थकाते हैं, हिलकान होते हैं, फिर थोड़ी बहुत भूख लगती आ जाते हैं क्योंकि दौड़ते हैं भागते हैं। अब जब हम बड़े होकर बैठ जाते हैं ना, तो याद रखिए कि हम उस मकसद हयात से पीछे होते। फितरत में है कि भाग दौड़ बंदा करेगा, जिसकी भाग दौड़ जिस रुख पे होगी वो वहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को शुरू में जो जन्नत दिखाई वो हमारे अब्बा जी ही थे ना। अब होता क्या है कि बच्चों को आप छोड़ देना तो वो दौड़ेंगे। अभी भी अगर आपके साथ 8-10 बच्चे हैं और उन्हें कहें बेटा जी जो करना कर लो, तो फिर एंड में हमने उनको यही कहना है कि आपको कल नहीं लाऊंगी, ऐसे होता है ना। अच्छा, रेस में जब लोग जाते हैं तो सब भागते हैं ना, इधर कोई एक उल्टा भागना शुरू हो जाए। और अगर आप किसी हाईवे के करीब रहते हैं ना, तो कभी अपनी विंडो में से देखिएगा, नीचे गाड़ियां सब एक रुख पे जा रही हैं। अगर किसी को दूसरे रुख पे जाना है तो उसको दूसरी लेन में आना होगा। जब हमारी भाग दौड़ जन्नत के लिए नहीं रहती, जो कि अफसोस और तकलीफ के साथ कहना चाहूंगी कि आज हो गया, तो फिर हमारी भाग दौड़ इस दुनिया के लिए रहती है। अगर हमारी भाग दौड़ जन्नत के लिए नहीं होगी ना, तो मैं डरते हुए कहने लगी हूँ कि आप में से नए लोग एकदम गलत मानी ना समझ जाएं, वो क्या है कि फिर उनकी दौड़ जहन्नुम की तरफ होती है। आप कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, हम तो जहन्नुम की तरफ नहीं जा रहे। तो याद रखिए कि जो दुनिया का शॉर्टकट रास्ता है ना, ये जहन्नुम के ऊपर से गुजरता और गुजारता है बंदे को। आपकी मेरी जिंदगी में जो मतलूब था, व इस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो वो ये था कि फरिश्तों, मैंने एक ऐसा इंसान दुनिया में भेजा है कि जो दुनिया में जाएगा उसके बाप का घर उसको बड़ा अजीज होगा और वो उस घर को पाने के लिए भाग दौड़ करेगा। तो आज आपने मैंने इस पारे के अंदर से ढूंढना है कि मैं किधर जा रही हूँ, मेरी भाग दौड़ किधर है। जो अल्लाह के कामों में नहीं भागेगा ना, वो जरूर शैतान के कामों में भागेगा। जिस दिन हमारी धड़कन बंद होती है, उस दिन सारी भाग दौड़ खत्म हो जाती है। दुआ करके शुरू करती हूँ कि अल्लाह, जब हम कब्र में जाएं तो बड़े ही मामूली से मामले के बाद फरिश्ते कह दें कि नम का नौ मतिल रुस, सो जाओ, जैसे दुल्हन सोती है और दुल्हन को उसके प्यारे के सिवा और कोई नहीं उठाता। फिर अल्लाह वहां इंसान को सुलाएगा, तो ये दुनिया काम की जगह, वो दुनिया आराम की जगह। आपका नफ्स आपको कहेगा कि अब बस काफी है। पर्सनल इबादत आपको इस काबिल करती है कि आप इज्तमाई इबादत कर सके। तो आइए देखते हैं कि फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है। आज उम्मत मुस्लिमा पे नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब का वादा कब पूरा होगा, और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ज्यादा परेशान होकर और नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। और वो क्या है कि जब सहाबाए कराम जैसी भाग दौड़ होगी, जो कि आज हम इस पारे में भी पढ़ेंगे और पिछले पारे में भी हमने पढ़ा। इस पूरे पारे में आपको हर सूरत के अंदर से मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात हमें दिखते नहीं और अल्लाह ना करे हमें दिखे, और फरिश्ते अभी तो बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि जो फरिश्ता ओनली वीकेंड सी मौत का फरिश्ता है, लेकिन आपको सूरज चांद सितारे हर एक की भाग दौड़ से आपको दिखेगा कि सब किसी न किसी हरकत में। तो हरकत के साथ बरकत है, और अल्लाह हमारे उम्मत मुस्लिमा में ये शौक डाल दे। मुझे है हुक्म ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बारे की हर सूरत और खास तौर पे सूरत हदीद, ईमान की ताकत भी इसी के साथ जोड़ लीजिए। आपको मुझे ईमान की बड़ी हैवी डोज मिलने वाली है आज सूरत हदीद के सिर्फ तर्जुमे से भी। मेरे जैसे इंसान के लफ्ज़ों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप देखेंगे इसकी एक एक आयत, वमा लकुम वमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, वेर आर यू गोइंग? अलम यानी लिल्लज़ी नामन अंतक्ष कुलूबों ले जिक्रिल्ला। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की खशियत से कांप जाए? इस तरह की आयतें हैं उसमें। कैसे लमन नमा हयात दुनिया, यानी दुनिया और आखिरत का तकाबुल और भाग दौड़ है। तो अल्लाह करे कि हम वहां तक पहुंचे। अभी हम चलेंगे सूरत ज़ारियात पे। इस सूरत का भी अंदाज कुछ ऐसा ही है इस पूरे पारे में कि आपको ये शुरू की जितनी भी सूरतें अब ज़ारियात और तूर और उसके बाद फिर नजम कमर और बाकी मिले ना, इसको सिर्फ फील कीजिएगा। इन्हीं को पढ़ते हुए तो मैंने नियत की है कि रात की घड़ियां मेरी क्यों साया जाए। मैं जिस दुनिया के भी मुल्क में होंगी, जहां भी अल्लाह मुझे ले जाएगा, मैंने उसकी सहर पे बोलना। शायद यही चीज कुछ लोगों को तहज्जुद की आदी कर दे, यही चीज नमाजों का आदी कर दे, फजर न मिस हो हमारी। तो ये जो सूरत ज़ारियात से लेकर हम सूरत हदीद तक की आयतें पढ़ने लगे हैं ना, इसमें कोई हुक्म भी नहीं है। मजे की बात है, कल ही आपको बता दिया था कि 7 मुस्तकिल मक्की सूरतें। देर इज नो या अय्युहल लज़ीना आमनू, क्योंकि या अय्युहल लज़ीना आमनू कहाँ आता है? ना कोई काम देना होता है। आप काम कर रहे हैं, बैठे हैं बैठे हैं, मैं कब कहूंगी शाहीन बात सुने? जब तो मुझे शाहीन से कोई काम होगा। फायजा बात सुनिए, कब कहूंगी? तो इस पूरे बारे में अल्लाह आपको आखिर में पुकारेगा। अभी जो करें करें। तो कायनात की निशानियों में, अब इसको हमने शुरू में दिल में लेना। हर सूरत के तर्जमे पे आपने ये सोचना है कि मैं भी क्या इसी तरह अल्लाह के आगे चल रही हूँ, अल्लाह के हुक्मों पे अपने आप को बांधे हुए हूँ, जैसे कि ये कायनात है। आप ये भी कह सकते हैं कि सूरत ज़ारियात से लेके अगली जो सूरतें हैं, ये साइंस से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बड़े शौक से पढ़नी चाहिए। आइए देखते हैं 31 से 60 आयात इस बारे में हम करेंगे सूरत ज़ारियात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। रुकू नंबर 2 है 31 से 46। सरकश कौमों पर अज़ाबे इलाही, यानी वो कौमें जिन्होंने सर खींचे, किससे खींचे? अतात से, या जो आप कहते हैं ना कश लगाना, और दूसरा कहते जी आगे सर झुका दें तो इतात है, सर पीछे झुका दें तो ये सरकशी है। अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, आइए देखते हैं। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुओ, मुराद यानी ए फरिश्तो, तुम्हारा मकसद क्या है, यानी तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? ख़त्ब का लफ्ज़ होता है ना मुहिम के लिए आता है उर्दू में, अगर आप देखें कि, यानी एक तो होता है आम तौर पे आना, लेकिन किसी वक्त कोई आपको एक बड़ा काम देकर भेजे तो फिर उसके आने के लिए ये लफ्ज है। पिछले पारे में बात शुरू हो चुकी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, तो इब्राहिम ने पूछा तुम क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। नोट कीजिए, कौम लूत को यहाँ गुनाहगार कौम का नाम भी दिया, किसी और कौम के लिए ये इशारा नहीं है। और अरबी देखें अगर आप मुसहफ में, तो कौम मुजरिमीन। कुरान की आयत का ये लफ्ज 32 नोट कर लीजिए। आप होमोसेक्सुअलिटी पे और लिवातत पे और ऐसे गंदे कामों पे और कोई भी जुमला ना बोले तो कुरान का ये लफ्ज दिखा दें अपने बच्चों को कि इट्स अ क्राइम इन अल्लाहस लॉ बुक्स, ये अमल एक क्राइम है। क्यों भेजे? ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान जदा हैं इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। मट्टी के कंकर कैसे बरसे थे? रिवायत में आता है कि उनके सरों पे वो कंकर गिरे बुलेट की तरह, फिर सर में खोपड़ी में सुराख हुआ, फिर वहां से होते हुए उनके प्राइवेट पार्ट से वो पत्थर बाहर गए। उलमा ने इसकी लॉजिक क्या दी है कि दिमागों से गंदी सोच शुरू हुई और जिस कभी फेर पे वो पूरी हुई, अल्लाह ने उस जिस्म के एक एक हिस्से को उसमें इन्वॉल्व किया। और तीसरी बात देखिए, हद से गुजर जाने वाले, ट्रांसग्रेशन। आयत 32 से 34, जो इसका अलग से नंबर नोट करके रख छोड़े। सिर्फ कुरान के ये 3 रेफरेंस दिखा दीजिए तो जो चीज़ फितरत के भी खिलाफ, अकल के भी खिलाफ, आज उसको क्या खूबसूरत स्लोगन्स देकर पेश किया जा रहा है। बस जितने ईमानदार वहां थे हमने इन्हें निकाल लिया, सोचिए जरा कितने को होंगे। और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, और ये किसका था? लूत अलैहिस्सलाम का, और उनका बेटा कोई नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां, और ये थे जिन्होंने हिजरत की। लिखिए 100% लोग होमोस हो चुके थे, 100% मर्द उधर थे। और हदीस में आता है क़यामत के दिन मुख्तलिफ अंबिया कराम जब अल्लाह के पास आएंगे ना, तो हजरत लूत के साथ एक मर्द भी नहीं होगा। यहाँ से आप देखिए ये इशारे मिल रहे हैं कि एक दौर दुनिया में ऐसा आने वाला है लोग हर तरह होंगे। फमा वजत नफीहा गैरा बैत मिनल मुस्लिमीन, कि हमने मुसलमानों का वहां कोई एक घर भी ना पाया। व तरकना फीहा आया, अल्लाह अकबर, और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत छोड़ दी, यानी अल्लाह ने एक घर को बचाकर बाकी घरों को पकड़कर ये बता दिया कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सिर्फ इस्लाम पे या ईमान वाले और अल्लाह की बात मानने वाले ही बचते हैं। इसी तरह मूसा अलैहि सलाम के किस्से में भी हमारे लिए तंबीह है कि हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस इसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना। बिलाहर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया, वो था ही मलामत के काबिल। इस रादियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस चीज पर गिरती थी उसे बुसीदा हड्डी हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। यानी वो कैसी जहरीली हवा थी कि उस कौम के जिस्मों पे लगती ना तो उनकी बॉडी भुरने लगती, भुरभुरे हो जाते। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर इन्हें इनके देखते देखते तुंदो तेज कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह अलैहि सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, और वो भी बड़े नाफरमान थे। पांच कौमों के किस्से अल्लाह ने चंद जुमलों में समेट दिए। ईमान से मुतल्लिक एक आयत ज़ारियात 35, फ़ख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए बंद गलियों में से भी राहें निकाल देता है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमारी नस्ल को इस गंदी कबाहत से निकालने के रास्ते बना दे। अगर कुछ लोग माशरे के या बुरी सोहबत के असर में ऐसी किसी भी चीज़ में शामिल हो चुके हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमा और उनको हिदायत अता फरमा। देखिए, पांच कौमें, पांच अजाब। कौमे नूह पे सैलाब आया, कौमे समूद बिजली के कड़के से मारी गई, कौमे आद आंधी से, और कौमे लूत मट्टी के कंकर से, और कौमे फिरौन दरिया में डबो दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पाक में पिछली कौमों की तबाही का जिक्र करते हुए अल्लाह ने आपको मुझे अपने अपने आमाल को दुरुस्त करने का मौका दिया है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद फिर आगे रुकू नंबर 3 है, 47 से 60। ये है वो आयत पारे के थीम पे दिया गया, और वो गया है फफिरू इलल्लाह। 47 से 60, वस्समा बनैना हा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम बड़ी कुदरत रखने वाले हैं। ये क्या अंदाज है अल्लाह ताला का। आप देखिए कि कायनात की हर चीज अल्लाह ने खुद बनाई, लेकिन कुछ चीजों को कुछ खास मुकाम दे दिए, कुछ खास तरीके से अल्लाह ताला ने उन चीजों को कैसे बना दिया, ये उसकी दलील आपके मेरे सामने है। और इसको हमने देखना है इस एंगल से कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बारे में, जो कि एक जमीन आसमान की तरह है, उसकी खूबसूरतियों को हमारे सामने लाते हैं। और जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बनाने वाले हैं। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया कि तुम नसीहत हासिल करो। करो क्या? फिर्रू इलल्लाह, बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग यानी रुजू करो। यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ, और अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ। बेशक मैं तुम्हें इसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहें। यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफा देगी। जरा सा रुकिए, इस आयत का नंबर नोट करें। अक्सर लोगों को नसीहत से बैर होता है, और मैंने अक्सर माँ को देखा है बच्चों के कान पे जून ही रेंगती, बच्चे ये करते बच्चे वो करते। तो ये आयत नोट कीजिए, नसीहत से पहले ईमान दीजिए, क्योंकि फ़इन्ना ज़िक्रतन फ़ऊल मोमिनीन, नसीहत तो ईमान वालों को ही फायदा देती है। अगर आपके बच्चे में या आपके शौहर में या आपकी बीवी में या आपके भाई में ईमान नहीं है तो माफ कीजिए, आपका बोलना उनको और सख्त करेगा, आपका समझाना उनको बहुत ही ज्यादा और भी दीन से दूर कर देगा। तो हम अक्सर ईमान देने से पहले नसीहतें करने लग जाते हैं, इस तरह ना कीजिए। इससे होगा क्या कि रिएक्शन होगा, और जिस दवाई का रिएक्शन हो जाता है ना, फिर उस दवाई को फायदे से ज्यादा कई दफा नुकसान देने का जरिया समझा जाता है। ये है ईमान की ताकत। आप इस दौरे कुरान में एटलीस्ट इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पहले ईमान पे काम करना है, फिर उसके बाद अमल सालेहात और बाकी चीजें तो आएंगी। किसी ने कहा था कि अल्लाह तू मेरे सामने आ, मैं तुझे देखकर सजदे करना चाहता हूँ। हकीकत है कि जब अल्लाह ताला की मार्फत दिल में आती है ना, तो उसके बाद तो फिर बंदा सीधा नहीं खड़ा होता, उसका तो दिल करता है कि वो घोड़े की तरह और फिर मवेशियों की तरह बिल्कुल ही अल्लाह के आगे झुका हुआ हो। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। नोट करिएगा, फेमस मारूफ मशहूर तरीन आयत क्या अल्लाह ने कहा, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये आयत इस सूरत में आ गई, तो नोट करना चाहे नंबर तो कर लीजिएगा। ना कि मैं इनसे रोजी चाहता हूँ और ना मेरी ये चाहत है कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोजी रिसान यानी रोजी देने वाला, अल्लाह ताला तो सबको रोजी देने वाला और जोरावर है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है इन्हें भी इनके साथियों के हिस्से हिस्से के मिसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब ना करें। बस खराबी है मुनकिरों को इनके इस दिन की जिसका वादा दिए जाते हैं। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक 55 ज़ारियात, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन। जब दिल के अंदर ईमान हो तो बाहर से आई हुई नसीहत तभी असर करती है। आप देखते हैं कि अंदर से कंप्यूटर ठीक है तो बस आप एक ऑन का बटन दबाते हैं, कंप्यूटर चलने लग जाता है। यही असूल कमोबेश हर मशीनरी का है। तो अपने बच्चों के अंदर की मशीनरी को ठीक करना है, फेथ इन एक्शन क्या है कि जैसे भी हालात हों दावते हक का काम जारी रखना है। दावते हक में सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, झगड़ने वालों का साथ नहीं देना, और हर मामले में मुकम्मल इताअत अल्लाह की करनी है और बंदगी का हक अदा करने की कोशिश करनी है। तो खूबसूरत से पैगाम पे सूरह ज़ारियात पूरी हुई।